ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। वे इस दौरान बिहार और ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। संस्कृति मंत्रालय कल योग दिवस के अवसर पर देश भर में 100 पर्यटक स्थलों और 50 से अधिक सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर योग सत्र आयोजित करेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के जोधपुर में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून के राष्ट्रपति निकेतन में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। वे राष्ट्रपति पार्क का शिलान्यास करेंगी। राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून से आम जनता के लिए खोला जा रहा है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ईरान और इसराइल के बीच पिछले 7 दिन से जारी युद्ध और तेज हो गया है। इसराइल ने कल तेहरान में ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने दक्षिण इसराइल में अस्पताल पर मिसाइल हमला किया। कल इजरायली सेना ने तेहरान और कराज में सरकारी प्रतिष्ठानों तथा पयाम हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले किए। ये हमले दक्षिण इसराइल के बीर शेबा में सरोका अस्पताल पर ईरान के हमले के बाद किए गए। ये अस्पताल इजरायली सैनिकों के उपचार के लिए प्रमुख स्थल है। अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरानी हमले की आशंका से इसके अधिकांश भागों को पहले ही खाली करा लिए जाने के लिए जानमाल की क्षति सीमित रही। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खान खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर वे युद्ध में शामिल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। केंद्र सरकार ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पत्रकारों से बातचीत में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को ईरान से निकासी के लिए 350 से अधिक भारतीयों के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत इसराइल से भी भारतीय नागरिकों को निकालने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इसराइल छोड़ने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को सीमाओं से सड़क मार्ग और उसके बाद हवाई मार्ग से भारत लाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने परियोजना वित्त पोषण के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें बैंकों को पहले प्रस्तावित धन संबंधी प्रावधान आवश्यकताओं में कमी की गई है। नए मानदंड 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बैंकों को अब निर्माण चरण के दौरान वाणिज्यिक रियल एस्टेट परियोजना ऋण के लिए 1.25% धनराशि अलग रखने का सामान्य प्रावधान समाप्त करना होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज सिक्किम से शुरू हो रही है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर नाथुला से सुबह 8:45 पर 36 श्रद्धालुओं के जत्थे को रवाना करेंगे। पर्यटन और नागर विमानन अपर मुख्य सचिव सीएस राव ने बताया कि राज्यपाल श्रद्धालुओं से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सुचारू यात्रा सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला आज से शुरू होगी। पहला मैच लीड्स के हेडिंगली क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। भाला फेंक स्पर्धा में मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा कल फ्रांस के पेरिस डायमंड लीग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। इस वर्ष इस लीग में भारत की ओर से केवल नीरज ही स्पर्धा में भाग लेंगे। उन्होंने इस वर्ष अब तक 3 स्पर्धाओं में भाग लिया है। मलेशिया के कुचिंग में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के वेलावन सेंथिल कुमार सीधे गेमों में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए। आज सेमीफाइनल में उनका सामना हांगकांग के दूसरे वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाउत्स क्वान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।